सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले मेरे सभी नौजवान साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज 24 मार्च 2017 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन तीन नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं नीरज अग्रवाल, जो भोपाल मध्य प्रदेश से हैं, और सिद्धार्थ गौतम, आप भी भोपाल मध्य प्रदेश से ही हैं, अतुल सिंह, आप अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से हैं। तो नीरज, सिद्धार्थ और अतुल, आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को देता हूं, वो देना चाहूंगा। चूंकि शनिवार, कल शनिवार है, गस्टेड हॉलीडे है, गस्टेड हॉलीडे नहीं कहना चाहिए, वो होता ही 5 डेज वीक को हम लोग लेकर के चलते हैं, तो शनिवार और रविवार को छुट्टियां हैं, तो इन दोनों दिनों में आपको डेली ऑडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं होगा और इसी तरह से लाइफ मैनेजमेंट भी अवेलेबल नहीं होता है। हाँ, लेकिन कल शनिवार को आपको प्रेस क्लिपिंग्स जरूर मिलेंगी, जैसे कि अभी तक मिलती रही है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को कुछ एडिशनल चीजें भी प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कुरुक्षेत्र और योजना, इन दोनों पत्रिकाओं के 4 आर्टिकल्स, 2 कुरुक्षेत्र के होते हैं हिंदी इंग्लिश के और 2 योजना पत्रिका के, उनके भी हिंदी इंग्लिश के आर्टिकल्स होते हैं, तो इस तरह से 4 आर्टिकल्स होते हैं, ताकि आप 2 दिनों में उनका बहुत अच्छे तरीके से एक बेहतर इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद मित्रों, एक वीकली क्वेश्चन भी होता है जो मेन्स एग्जामिनेशन के पैटर्न पर होता है, और मैं बीच बीच में आप लोगों को सतर्क करता रहता हूं। मैं सतर्क शब्द ही इस्तेमाल करूंगा, याद दिलाना शब्द में जानबूझ करके इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, कि आप इसे तुरंत लेकर लिखने मत बैठ जाइए। अगर आप प्रश्न पर अभी कुछ नहीं लिख पा रहे हैं तो आपको निराश होने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, प्रश्न तो उस दिन आप लिखने के पूरे योग्य हो जाएंगे जिस दिन आप परीक्षा हॉल में जाएंगे। अभी तो आप प्रोसेस में हैं, अभी तो आप तैयारी ही कर रहे हैं ना, तो आप इसको अपना मापदंड मत बनाइए कि मेरी तैयारी हो गई है कि नहीं हो गई है। इसको एक प्रोसेस में रखिए, तैयारी करने का एक ढंग, एक सीढ़ी समझिए, पायदान समझिए, और उसी हिसाब से आर्टिकल को समझ करके उस पर तैयारी कीजिए, मटेरियल जुटाइए, पॉइंट्स नोट कीजिए, और जब आपको लगे, आपको संतुष्टि हो जाए कि हाँ मेरी तैयारी पूरी हो गई है, फिर उसको फ्रेम करने के लिए बैठिए, लिखने बैठिए। और यह भी मत समझिए कि एग्जाम में तो चूंकि आपको एक क्वेश्चन के लिए केवल 9 मिनट्स मिलेंगे तो 9 मिनट्स में ही मुझे लिख करके इसे खत्म करना है। नो, फिर से मैं कहना चाहूंगा, वो तो आपका अल्टीमेट एम है, वो तो मंजिल है ना, अभी तो आप यात्रा पर हैं, तो आप दीजिए ना उसको 9 मिनट की जगह आप 19 मिनट दीजिए, 19 मिनट क्या उसको 90 मिनट दीजिए। परफेक्शन पर जाने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा लिख सकते हैं, ये आपके दिमाग के मैकेनिज्म का हिस्सा बन जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से आपको एक वीकली क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके बाद मित्रों, जो हमारे क्लास के जो स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा, तब आप लोग अपने अपने मेल पर एक्सेस कर लेंगे। तो मित्रों, ये कुछ सूचनाएं थी। अब मैं आता हूं AIR न्यूज पर, लेकिन इससे पहले कि मैं AIR न्यूज की बात करूं, मैं थोड़ी DD न्यूज के बारे में आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा जो अभी AIR न्यूज में मेंशन नहीं किया हुआ है। नहीं, AIR न्यूज में वो बात नहीं थी। DD न्यूज में आपने देखा कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है ना, बैकवर्ड क्लास कमीशन, इसको अब विधेयक के जरिए एक संवैधानिक दर्जा दिए जाने की बात हो रही है और इसका नाम भी बदल दिया जाने वाला है, एक नया नाम इसे दिया जाएगा जिसका संबंध एजुकेशन और उससे होगा। मित्रों, नाम क्या है मैं अभी आपको नहीं बताने जा रहा हूं, मैं केवल आपको सतर्क करने जा रहा हूं। सतर्क इस मायने में कि पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह पर अब एक नया आयोग बनाने की बात हो रही है, नए संस्थान की बात हो रही है, जिसे बकायदे संवैधानिक दर्जा दिया, यानी कि संविधान से एक्ट ला करके, संविधान में संशोधन करके बकायदे उसको बनाया जाएगा। अभी जो है ये सांविधिक दर्जा है, मतलब एक्ट के जरिए बना है, संविधान में नहीं, उसे बकायदे संविधान संशोधन करके बनाया जाएगा। और जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर लेता है तो उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसका तो सीधे संबंध संसद से हो जाता है। अदरवाइज संबंध किससे रहता है? सरकार से रहता है, इसीलिए उसे सांविधिक दर्जा कहते हैं। अभी तक इसको क्या दर्जा है? सांविधिक, यानी कि एक्ट के तहत यह बना है। इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से समझ लीजिए तो मैं समझता हूं कि शायद आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अब किसी नई जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल करना है, राइट? तो अभी सरकार बकायदे ऐसा कर सकती है, यह सरकार के अधिकार में है। लेकिन मान लीजिए कि जब ये एक संवैधानिक संस्था बन जाएगी, ये आयोग संवैधानिक संस्था बन जाएगा, तब सरकार के हाथ से यह अधिकार खत्म हो जाएगा। अगर किसी जाति को पिछड़ा वर्ग का दर्जा देना है तो संविधान उसको, संसद ही उस दर्जा, वो दर्जा दे पाएगी, मतलब बकायदे संसद में उस पर बहस होगी। ठीक इसी तरह से यदि किसी को निकालना है तो संसद उस पर बहस करेगी। कुछ भी परिवर्तन करना होगा उसमें तो वो सारे के सारे अधिकार संसद के पास होंगे, सरकार के पास नहीं होंगे। और मुझे लगता है मित्रों कि आप संसद और सरकार के इस अंतर को अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। संसद का मतलब होता है राष्ट्र, पूरा देश मिलकर के, क्योंकि उसमें तो सभी सांसद बैठे हुए हैं। जब हम सरकार की बात करते हैं तो उस संसद का बहुमत वाला हिस्सा वो सरकार है। तो बट नेचुरली कि देखिए सरकार का जो आकार है वो संसद के आकार से बहुत छोटा है, अधिकार भी सरकार का बहुत छोटा है। सरकार तो एक तरह से एक्ट करने वाली हो गई ना, वो तो कार्यपालिका का हिस्सा हो गई और संसद विधायिका का हिस्सा है। तो ये अंतर थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मित्रों इस पर आगे चलकर के बात होगी, अभी तो संसद में विधेयक पेश किया जाएगा, जो भी होगा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, फिर उस पर बहस होगी। तो मैं आपको केवल सतर्क कर रहा हूं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से कि इसे सामान्य बात समझकर इसकी आप लोग अनदेखी मत कर कीजिएगा। और जहां तक मेरी बात है तो मेरी तो कोशिश होगी ही कि मैं जब भी इस पर कोई बात होती है, चर्चा होती है, तो उसे आप लोगों के ध्यान में लाऊं। तो दोस्तों अब मैं AIR न्यूज पर आता हूं। AIR न्यूज में आपने सुनी है और उसमें कई बातें ऐसी हैं जो इनफैक्ट इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन अपने आप में टॉपिक के रूप में उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, यानी कि वो कंटेंट के रूप में ठीक है, महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे कंटेंट के रूप में, उन कंटेंट से कभी कभी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चन भी बनेंगे अपने आप में वो कंप्लीट न्यूज को लेकर नहीं बनेंगे। मतलब मेरे कहने का जो मतलब है, शायद मुझे लगता है कि बात कुछ उलझी सी आपको महसूस हो रही होगी, मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि अब मैं जिन न्यूज की चर्चा कर रहा हूं उन न्यूज को आधार बनाकर अपने आप में कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन हां जो दूसरे क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चंस में आप इस न्यूज का उपयोग कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल के रूप में आप उपयोग करके एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको चलिए कुछ न्यूज बताता हूं। एक खबर ब्रिटेन में अभी जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ उसके परिसर में, आपने उसके बारे में न्यूज सुनी। डीडी न्यूज पर तो इसका काफी विस्तार से आया भी था, उदय भास्कर जी जो काफी रक्षा विशेषज्ञ माने जाते हैं उनकी बातचीत भी आई थी। हालांकि उस बातचीत बहुत गंभीर या बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत वो मुझे नहीं लगी। तो ब्रिटेन में जो हमला हुआ है, देखिए इसकी अब जो जिम्मेदारी है वो ISIS ने ले ली है, यानी कि जो सबसे बड़ा जो अभी आतंकवादी संगठन है ISIS, इन सब अलकायदा, इन सब के नाम आप सुनते हैं, उसने ये जिम्मेदारी ली है। आप देख रहे हैं कि पिछले दो साल से लगातार, दो तीन साल से कह लीजिए, 2015 में फ्रांस में पर अटैक हुआ था लास्ट में, तो लगभग डेढ़ दो साल हो गए हैं लगातार अटैक हो रहे हैं और ये अटैक पश्चिम यूरोपीय देशों पर हो रहे हैं, मतलब यूरोप के जो डेवलप्ड कंट्री हैं उस पर हो रहे हैं। अमेरिका में तो 2000 से शुरू हो ही गया है वो जो वर्ल्ड ट्रेड पर जो हमला हुआ था। तो ये पिछले जो दो दशक हैं या नई शताब्दी की जो शुरुआत है वो विश्व आतंकवाद से भरी हुई शताब्दी हमें दिखाई दे रही, दो दशक तो खासकर। तो निश्चित रूप से अब पूरा देश, तो पूरी दुनिया इसको लेकर चिंतित है। आगे देखते हैं कि ये क्या रूप लेता है, क्या एक्शन लिए जाते हैं, वो हम देखेंगे। तो देखिए अभी एक छोटा सा कंटेंट है कि ब्रिटेन पर भी ये हमला हुआ और वो भी पार्लियामेंट है ना, क्योंकि पार्लियामेंट तो देखिए एक संप्रभु सत्ता का एक प्रतीक होता है ना। भारत में भी जो पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था उसको इसी रूप में लिया गया था कि ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, आप सीधे सीधे राष्ट्र को चुनौती दे रहे हैं ना, प्रतीकों का अपना महत्व तो होता है। इसके बाद एक खबर आपने और सुनी अयोध्या विवाद को लेकर, इसके बारे में हम लोग इससे पहले बात कर चुके हैं कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये बात कही है कि अयोध्या बाबरी मस्जिद के विवाद का जो मामला है, इससे बेहतर होगा कि आपसी बातचीत के जरिए सुलझाया जाए, क्योंकि यह धर्म और आस्था का मामला है और यदि जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट इसमें मध्यस्थता करने को तैयार है। इसको लेकर के हम दो तीन एपिसोड में थोड़ी थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सभी जो इसके वर्ग हैं, जो इसमें शामिल हैं, उनसे कहा है कि आप सब इस बारे में अपने अपने लिखित बयान दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। 6 अप्रैल का उन्होंने समय दिया है, देखते हैं कि उस पर क्या होता है। लेकिन इस बीच में आपने देखा होगा कि एडिटोरियल कमेंट आने शुरू हो गए हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी आने शुरू हो गए हैं। कल के दैनिक हिंदुस्तान में एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड भी कर रहा हूं, जो हमारे जो पलोक बसु हैं, चीफ जस्टिस रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं तो उनको ये समस्या बहुत अच्छे से मालूम भी होगी, तो उन्होंने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। आर्टिकल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, हिंदी में है तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इस तरह की बातें आनी शुरू हो गई हैं, जो राजनेता हैं, जो धर्म नेता हैं, वो भी अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, कुछ इसके पक्ष में हैं, कुछ इसके विपरीत हैं। तो बट नेचुरल है कि ये सारी चीजें तो होती ही हैं। आपको बड़े खुले मन से उन सभी की बातों को सुनना है, पढ़ना है, ध्यान देना है। मतलब आपने अगर अपनी तरफ से कोई फैसला कर लिया है तो प्लीज आप उसी फैसले पर मत अड़िग रहिए और दूसरे के फैसले को आउटराइट रिजेक्ट मत कर दीजिएगा, क्योंकि यही तो डेमोक्रेसी है। और तभी सच पूछे तो सही हल भी निकल पाएगा जब हर तरह के विचार उसमें शामिल होंगे। तो मित्रों, ये आर्टिकल मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, वो मेरे ध्यान में नहीं आई कि जहां तक इस आपसी बातचीत की बात है, आप देखिए कि हमारे यहां जो फैमिली कोर्ट है या जो लोक अदालतें लगाई जाती हैं, है ना, कि जुडिशरी को लेंगे तो उसका जो रूट लेवल है वो एक तरीके से लोक अदालतें हैं, है ना। तो लोक अदालतों का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली समझौते पर ही आधारित है कि दो लोग हैं आपस में झगड़ रहे हैं, अगर उनको लगता है कि हम बातचीत से इसका हल निकाल सकते हैं तो कोर्ट उनको अनुमति देती है कि ठीक है आप बातचीत कर लीजिए और बकायदे उसका लिखित में सब समाधान होता है। और मजेदार बात है कि लोक अदालतों में जो फैसला हो जाता है उसके खिलाफ फिर कोई अपील नहीं होती है कि अब आप सेशन कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जो दो लोग हैं पक्ष प्रतिपक्ष तो वो दोनों ही ने तो आपस में समझौता किया है, आपस में बातचीत के जरिए हल किया है, तो अब उसकी अपील कैसे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो लोक अदालत जो बिल्कुल रूट लेवल पर जो जुडिशरी का सिस्टम है उस सिस्टम को बिल्कुल अब हाईएस्ट लेवल पर लाने की कोशिश की गई है। इससे लग रहा है कि भारत में जो भारत जो समाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं अब एक अलग तरीके से आपके सामने रख रहा हूं। जो सामाजिक शक्ति होती है या जो सामाजिक क्षमता होती है, सामाजिक सद्भाव होता है, सामाजिक या कह लीजिए सोशल विजडम जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है। और उसके सामने चाहे वो प्रशासन हो, चाहे राज्य हो, चाहे राष्ट्र हो, सच पूछे तो अगर समाज शक्तिशाली है तो फिर राज्य राष्ट्र इन सब प्रशासन को समाज के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। जहां समाज कमजोर होगा तो बट नेचुरली कि वहां राज्य प्रशासन ये सब के सब बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कह रही है कि आपस में सुलझा लें तो कहीं ना कहीं वो ये बात इस बात को स्वीकार कर रही कि भारतीय समाज की शक्ति अभी भी क्षीण नहीं हुई है, उसमें जीवंतता है और इस समस्या का निदान वो अपने लेवल पर कर सकते हैं। एक बड़ी बात है मित्रों। तो ये मैंने सोचने के लिए आपको एक पॉइंट दिया है, आप इस पर सोच सकते हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा कि डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं, वहां के हाई कोर्ट ने कहा कि ये उनका नैतिक अधिकार नहीं है कि वो हड़ताल पर जाएं, उन्होंने वापस आने के लिए कहा है लेकिन डॉक्टर्स ने अभी आने से अस्वीकार कर दिया है। अब देखते हैं कि मामला कहां तक आगे बढ़ेगा। तो यह एक हेल्थ सेक्टर को लेकर के कंटेंट है। ईवीएम मशीन की बात आप देख ही रहे हैं कि जैसे ही अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए थे, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने आरोप लगाया था कि ईवीएम जो मशीन है उसमें ऐसा सिस्टम है कि एक ही पार्टी को वोट दिए जा सकते हैं, तो आरोप लगाया था। बाद में फिर हमारे दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल जी, उन्होंने भी इस तरह का आरोप लगाते हुए, वहां जो एमसीडी के चुनाव होने हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, तो उन्होंने कहा कि ये बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। उसको लेकर के भी आपको काफी आर्टिकल्स पढ़ने को मिल रहे होंगे। तो सरकार ने बयान दिया है कि असल में ईवीएम मशीन पर प्रश्न चिन्ह लगाना एक प्रकार से मतदाताओं की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाना है। तो मुझे नहीं लगता है कि ईवीएम मशीन को लेकर के कोई प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो साइंस का ही क्यों ना हो, लेकिन देखिए वैसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है, फिर भी एक कंटेंट के रूप में आपके दिमाग में होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद फिर कर्ज माफी को लेकर के न्यूज थी कि उत्तर प्रदेश में अभी जो बीजेपी की सरकार आई है, इसने अपने मैनिफेस्टो में, जिसे वो संकल्प पत्र कहते हैं, कहा था कि वहां के किसानों के कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। अब उसको लेकर के एक प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि 27,000 करोड़ रुपए के कर्ज है और उसको माफ करने के बाद स्टेट की जो हालत है वो काफी खराब हो सकती है। और उस पर हमारे वित्त मंत्री जी ने साफ कह दिया है कि भैया वो स्टेट का मामला है और स्टेट अगर माफी करना चाहती करे, उसके लिए केंद्र कुछ नहीं कर सकती है। तो देखते हैं, कर्ज माफी को भी लेकर के एक विवाद सी स्थिति पूरे देश में बनी हुई है, आप देख रहे हैं, क्योंकि इससे बैंकों की हालत खराब हो जाती है। हमारे स्टेट बैंक की जो हेड हैं मैडम भट्टाचार्य, उन्होंने कहा ही है कि भैया कर्ज माफी अगर करते हैं तो फिर सरकार हमें उतना पैसा दे, क्योंकि बैंकों की हालत आपको मालूम है कि एनपीए 12% तक पहुंच गया है, जो पैसा उनको वापस नहीं मिलना है। लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए बैंकों के, सरकारी बैंकों के ऐसे हो गए हैं जो डूबत खाते में डालने की स्थिति आ गई है। तो बैंकों की स्थिति वैसे ही बहुत बुरी है, और अगर इस तरह से कर्ज माफी की भी जिम्मेदारी बैंकों पर डाल दी गई तो उनकी हालत तो और ज्यादा खराब हो जाएगी। अंततः बैंकों की हालत खराब होने का मतलब होता है देश की हालत खराब होना। दोस्तों, कर्ज माफी को लेकर के एक छोटी सी खबर थी। फ्रेंड्स, न्यूज में तो इतनी ही बातें थी। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। आज काफी क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स हैं। दोस्तों, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं उनकी आपको जानकारी दे सकूं, और सच ये है कि उसकी जानकारी देने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन इसमें एक जो क्लिपिंग्स है उधर मैं आपका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहूंगा, वो हिन्दुस्तान की क्लिपिंग, दैनिक हिन्दुस्तान की, जिसमें अभी जो हमारे सिद्धू जो क्रिकेटर हैं और जो अभी कांग्रेस की तरफ से पंजाब में एमएलए भी बने हैं और मिनिस्टर भी बनाए गए हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो मिनिस्टर बनने के बाद भी जो ये अपने कपिल शर्मा का जो शो है उसकी शूटिंग करते रहेंगे। उसको लेकर के थोड़ी सी विवाद की स्थिति बनी थी। फिर वहां के चीफ मिनिस्टर ने अकाउंटेंट जनरल से अपने जो सलाह मांगी, और उन्होंने कहा कि नहीं, उनको ये मंत्रालय देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उनको जो मंत्रालय दिया गया है उसका संबंध कहीं न कहीं वो जो शो करते हैं, टीवी शो करते हैं, उससे है। इससे होता क्या है कि वो उसे अनावश्यक लाभ पहुंचा सकते हैं, तो जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में कहते हैं हितों का टकराव। मतलब आप किसी भी ऐसे पद पर नहीं रह सकते जो आपके खुद व्यापार से संबंधित है, कि आप अपने आप को खुद पुरस्कृत कर सके, फायदा पहुंचा सके। उसको लेकर के अब एक स्थिति विवाद की बनी है। तो ये जो हितों का टकराव है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके बारे में क्या निर्णय होते हैं, क्योंकि प्रशासन में भी ऐसा होता है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि अब एक बहस यही चल पड़ी है कि विधायक और सांसदों को पेंशन दी जाए, नहीं दी जाए, कितनी दी जाए, किसको दी जाए। इसको लेकर के अब जो सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, उसको लेकर के एक विवाद की स्थिति बनी है। अब ये दूसरी विवाद की स्थिति, अब बहस की स्थिति कहना चाहिए, विवाद नहीं कहना चाहिए। अब दूसरी बहस की स्थिति अब ये आई है कि जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, या कह लीजिए चलिए मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि सिद्धू जी तो अब मिनिस्टर हो गए हैं, तो क्या मिनिस्टर बन जाने के बाद उन्हें इस तरह के अपने कामों को करते रहना चाहिए, या उसे प्रतिबंधित कर देना चाहिए, उससे अलग हो जाना चाहिए, क्या? तो ये भी एक डिस्कशन का पार्ट है। देखते हैं कि ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स हैं, आप सब देख लेंगे। अब मैं आज के ईमेल पर आता हूं। सभी ईमेल लिखने वाले अपने मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, रुद्राक्ष सोंद चंडीगढ़ से, शुभम गुप्ता इलाहाबाद से, रजत कुमार बोलपुर से, किसलय पांडे, हरिओम राय, अजय जायसवाल, योगेश कुमार साहू, नीतीश कुमार बेगूसराय बिहार से, सरोज राय बागबहरा छत्तीसगढ़ से, राकेश टूडू जमशेदपुर से, और संतोष कुमार आरा बिहार से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज का यह डेली ऑडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। 2 दिनों के लिए इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।